नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा APSTS के 50 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तिरप जिले के खोंसा में संपन्न। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय तामता ने शिरकत की। मई महीने में सकल GST संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून को दाखिल किए जा सकते हैं। आगामी 18 जून को मतदान और मतगणना एक ही साथ की जाएगी। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्र दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान से 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे बाजार रोजगार बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा APSTS के 50 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तिरप जिले के खोंसा में संपन्न हुआ। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय तामता ने शिरकत करते हुए तिरप जिले के लिए APSTS की 3 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने परिवहन विभाग और APSTS को जनता की सेवा के 5 दशक सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि APSTS दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों सहित अनगिनत समुदायों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता रहा है। उन्होंने आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मजबूत सड़क अवरचना अवसरों के द्वार खोलने और लोगों की आजीविका में सुधार लाने की कुंजी है। केंद्र मंत्री ने यह भी जानकारी साझा की है कि भारत सरकार केंद्र सड़क और अवसंरचना निधि CRIF तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHAIDCL द्वारा संचालित कई प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने की 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई के महीने में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्र जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रहा था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
होटल, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्य एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये हो गई है। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपये होगी। वहीं चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,283 रुपये हो गई है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान ने रडार में और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की है। जवाबी कुवैत ने कहा है कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान और अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
मलेशिया ने 16 वर्ष तक कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों का आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनी पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग जैसे चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
हांगकांग में 22वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।